नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संविधान में परिसीमन के प्रावधान से हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का होगा तर्कसंगत वितरण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ऐतिहासिक कदम बताया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की, जौ, हल्दी और अदरक के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लिया निर्णय। चेस्टर हिल जमीन मामले में माकपा ने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच व कार्यकारी मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग की। और प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से आयोजित होंगे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शिविर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्कसंगत वितरण होगा। अमित शाह ने आज लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को लागू करना है।
हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है।
विपक्षी गठबंधन की आलोचना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण के संवैधानिक संशोधन का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष के सभी सदस्यों ने खुलकर महिला आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही 1971 में परिसीमन प्रक्रिया को सीमित किया था और अब वही इसका विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। कुल्लू में आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल महिलाओं को सामाजिक व राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान से उनके बुनियादी अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की।
मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला, जो आज से पहले एक बार नहीं अनेकों बार राजनीतिक दलों ने चर्चा तो किया लेकिन उसके बावजूद जो है इस बिल को पारित करने के लिए जितनी दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की जो आवश्यकता थी वो पहले कभी नहीं की, अभी मोदी जी ने की।
प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की, जौ, हल्दी और अदरक के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विशेष बल दे रही है।
जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है वो रूरल इकोनॉमी को, जो गांव में रह रहा किसान, बागवान, उसकी फाइनेंशियल हालत को कैसे ठीक किया जाए वो, और जो बजट अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की है उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत हमारे जो गेहूं है इसका दाम जो है 60 रुपए से बढ़ा करके 80 रुपए कर दिया गया है और मक्की का दाम 40 रुपए प्रति किलो से बढ़ा करके 50 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। प्राकृतिक हल्दी है उस 150 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से 30 रुपए प्रति किलो अदरक की प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया है।
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी दी। इनमें से 30% पद महिला पुलिस जवानों के लिए आरक्षित हो रहेंगे। इसके अलावा अग्निशमन विभाग में असिस्टेंट फायर गार्ड के 500 पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई। मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए आईजीएमसी और टांडा को छोड़कर प्रदेश के अन्य 4 मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त मेडिकल प्रोफेसरों को हायर करने को भी स्वीकृति दी। बैठक में सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों को निश्चित मानदेय पर पुनर्नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार को सर्वसम्मति से भारतीय ग्रैपलिंग संघ जीएफआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय ग्रैपलिंग के महासचिव सुबोध कुमार यादव ने आधिकारिक पत्र जारी करते हुए प्रोफेसर सिकंदर कुमार को इस पद के लिए आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों के खेल प्रेमियों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है। गौरतलब है कि भारतीय ग्रैपलिंग संघ विश्व की सबसे बड़ी कुश्ती संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से मान्यता प्राप्त है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेस्टर हिल जमीन मामले को लेकर माकपा ने प्रदेश सरकार से कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता को तुरंत पद से हटाने की मांग दोहराई है। सीपीआईएम के राज्य सचिव संजय चौहान ने आज शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की बात करते हैं, लेकिन मुख्य सचिव पर लगे आरोपों पर मंत्रियों सहित पूरी सरकार खामोश है। उन्होंने कहा कि चेस्टर हिल मामला बहुत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मुख्य सचिव को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की जल जंगल जमीन उसका जो है संरक्षण होगा, ताकि ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये जो गैर कानूनी पैसा लगाकर हिमाचल प्रदेश की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे, तो हम मांग कर रहे हैं कि इस भ्रष्ट अधिकारी को निकालो और मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सही में लड़ाई लड़ना चाहते या केवल जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शिविर आयोजित करवाए जाएंगे। इसका उद्देश्य उन बच्चों के आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है जिन्होंने 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। ये शिविर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस, स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करवाए जाएंगे। ये शिविर जिलावार चरणबद्ध ढंग से सरकारी और निजी विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय चुनावों में पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे आने का मौका दिया जाएगा। आज शिमला में उन्होंने कहा कि इन चुनावों के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर किए गए मंथन की जानकारी देते हुए विनय कुमार ने कहा कि सभी पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। प्रदेश में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सोलन जिला में अभी तक 528 किशोरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने बताया कि जिले में करीब 7000 किशोरियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने सभी पात्र किशोरियों से वैक्सीन लगवाने और भ्रांतियों से दूर रहने का आग्रह किया।
ये वैक्सीन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचने के लिए है और औरतों में मुख्यतः होने वाले कैंसर में से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक है, उसके लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ भ्रांतियां पैदा हो रही हैं इस बात को लेकर इंजेक्शन सेफ है या सेफ नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इंजेक्शन है WHO द्वारा प्रमाणित वैक्सीनेशन है और WHO का डेटा इसको पूरी तरह से सेफ प्रमाणित करता है। 582 बच्चियों को हम अभी तक वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। 7000 के आसपास हमारा जो टारगेट है जो बच्चियां इस एज ग्रुप की हैं।
उधर सिरमौर जिला में अब तक 1200 से अधिक बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संविधान में परिसीमन के प्रावधान से हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का होगा तर्कसंगत वितरण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ऐतिहासिक कदम बताया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की, जौ, हल्दी और अदरक के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लिया निर्णय। चेस्टर हिल जमीन मामले में माकपा ने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच व कार्यकारी मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग की और प्रदेश के सभी स्कूलों में 20 अप्रैल से आयोजित होंगे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।